हिंदी काव्य में दलित धारा भीम शक्ति को जगाते हुए विश्व की किसी भी भाषा के साहित्य में विरोध, नाराजगी और क्रोध के स्वर हमेशा ही रहे हैं। और जब तक मानव समाज सभी प्रकार के शोषण व दमन से मुक्त नहीं होंगे व सच्ची मानव समता तथा मानवीय सम्मान की स्थापना नहीं होगी, ये स्वर विद्यमान रहेंगे। चाहे ये स्वर अमेरिका व अफ्रीका में हो ब्लैक साहित्य के रूप में या भारत में दलित साहित्य के रूप में। भारत में सदियों से दलितों का शोषण होता आया है और अनेक स्तरों पर आज भी उनका शोषण हो रहा है। हालांकि हम तेजी से 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं और कंप्यूटर युग में प्रवेश कर रहे हैं। दलित स्वर भारतीय साहित्य का अंश प्राचीन युग में भी रहे हैं व मध्यकालीन युग में भी, किंतु इस साहित्य का इस रूप में नामकरण वह एक धारा के रूप में प्रतिष्ठा 20वीं सदी के मध्य में ही स्थापित हुई है। मध्यकाल में महाराष्ट्र अनेक संत कवियों नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, चोखा मेला आदि ने मध्यकाल में अनिवार्य मानवीय समानता की आवाज उठाई और आधुनिक काल में महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी गहन आस्थाओं और लेखन से महाराष्ट्र के दलितों में नई जागृति पैदा की। ये जागृति बाद में पूरे देश में व्याप्त हुई। ज्योतिबा फूले व बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरणा प्राप्त कर महाराष्ट्र के मराठी दलित लेखकों ने 6वें दशक के आरंभ में दलित मुक्ति आंदोलन व दलित साहित्य को जन्म दिया। मराठी साहित्य में दलित मुख्य धारा बनी व दलित आत्मकथाओं का इसमें विशिष्ट स्थान बना, किंतु अन्य भाषाओं में से इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए लगभग 20 वर्ष लगे। 8वें दशक में देश के अन्य भागों में भी दलित चेतना फैलने लगी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखक भी दलित आंदोलन से प्रेरणा लेने लगे। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी व अन्य भारतीय भाषाओं में भी दलित जीवन को विषय बनाकर लेखन होने लगा। प्राचीन, मध्य व आधुनिक तीनों ही कालों में हिंदी में दलित जीवन पर लेखन होता रहा है, लेकिन किसी भी आलोचक ने सामाजिक जीवन के इस महत्वपूर्ण पक्ष को रेखांकित नहीं किया। 8वें दशक के अंत व 9वें दशक के आरंभ में हिंदी लेखकों पर भी दलित जागृति का प्रभाव नजर आने लगा। सो हिंदी साहित्य का अध्ययन दलित दृष्टिकोण से भी होने लगा। विश्वविद्यालय में कुछ शोधकर्ताओं ने इस प्रकार के विषयों हिंदी साहित्य में दलित वर्ग, हिंदी उपन्यास में दलित वर्ग आदि पर शोध प्रबंध लिखे, लेकिन इस पक्ष पर सही मायनों में अग्रगामी कार्य अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे माता प्रसाद की कलम से संपन्न हुआ है। 1993 में वाराणसी से प्रकाशित उनका शोध ग्रंथ हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा इस विषय पर गहन शोध व वस्तुगत विशेषण का प्रमाण देने वाला है। इस ग्रंथ में न सिर्फ दलित दृष्टिकोण से हिंदी कविता का विश्लेषण ही किया गया है, वरन हिंदी कविता से, विशेषतः आधुनिक हिंदी कविता से दलित कविता का व्यापक चयन भी प्रस्तुत किया गया है। माता प्रसाद ने इससे पहले भी अनेक रचनाएं रची हैं, जिनमें अछूत का बेटा, वीरांगना झलकारी बाई, एकलव्य, सभी नाटक, उत्तर प्रदेश की दलित जातियां, अरुणाचल प्रदेश व राजनीतिक दोहे आदि शामिल हैं। अतीत व वर्तमान दोनों में उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन को देखते हुए यह सुखद आश्चर्य का विषय है कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व इस प्रकार सृजनात्मक व बौद्धिक गतिविधि से भी इतनी गहराई से जुड़ा है। जान पड़ता है कि लेखक का हृदय अपनी सृजनात्मक गतिविधि में स्थित है, जबकि उनका तर्कशील मस्तिष्क उन्हें राजनीति की ओर खींच ले जाता है। यह ग्रंथ 12 अध्यायों में बटा है और 2 भागों में है। पुस्तक के पहले भाग में विशेष पृष्ठभूमि से संबंधित अध्याय में लेखक ने अर्वाचीन काल से दलितों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर व्यापक अध्ययन किया है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था ने दलितों को जन्म दिया, जिन्हें उस समय चांडाल, अछूत आदि कहा जाता था। माता प्रसाद ने दलित शूद्र की व्याख्या जो कुचला गया हो या दमित किया गया हो के रूप में की है। उन्होंने अनेक ऐसे उदाहरण भी दिए हैं जिनमें विभिन्न संदर्भों में दलितों की व्याख्या की गई है। उदाहरण के लिए जिन्होंने भारत के जनगणना आयुक्त का उदाहरण दिया है, उन्होंने 1931 में दलितों का अर्थ दिया, मैंने उन जातियों की गणना दलित जातियों में की है जिनके स्पर्श से उच्च जाति के हिंदू अपनी शुद्धि करते हैं। वे जातियां जिनका मंदिर प्रवेश निषिद्ध है तथा जिनके कुएं अलग हैं। डॉक्टर अम्बेडकर उन जातियों को दलित समझते हैं जिन्हें अशुद्ध समझा जाता है, जैसे धोबी, भंगी, चमार, मोची इत्यादि। दलितों में अनुसूचित जातियां ही नहीं वरन अनुसूचित जनजातियां व अन्य पिछड़ी जातियां भी शामिल हैं। माता प्रसाद के अनुसार वर्ण व्यवस्था वैदिक काल की देन है। वे इस मत से सहमत है कि ईरान के अहुर व भारत के असुर एक ही जनजाति की शाखाएं हैं, किंतु ईरान में अहुरों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है, जबकि भारत में असुरों को नीच समझा जाता था। लेखक ने प्राचीन भारत में आर्य और अनार्य संघर्षों का भी जिक्र किया है। आर्यों ने भारत के इतिहास को अपने विजेता की दृष्टि से प्रस्तुत किया है, किंतु इतिहास की अनार्य दृष्टि भी है जो आर्यों को हमलावर समझती है। वह द्रविड़ आदि अनार्यों को भारत का मूल निवासी समझती है। लेखन ने शूद्र की भी अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। डॉक्टर अम्बेडकर शूद्रों को सूर्य परिवार के क्षत्रिय समझते हैं। इस शूद्र के अन्य अर्थों में मार कर भाग जाने वाला, किसी शोक से ग्रस्त होने वाला तथा जो असभ्य है वह शारीरिक श्रम के लिए बना है आदि शामिल है। वैदिक काल से ही शूद्रों पर प्रतिबंध लगे हुए थे, किंतु उपनिषदों में आचरण को जाति विभाजन का आधार बताया गया है। इस दृष्टि से जिनका आचरण अच्छा है वे ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य पद प्राप्त करते हैं, तथा जिनका आचरण बुरा है वे शूद्र बन जाते हैं। रामायण व महाभारत काल में शूद्रों पर प्रतिबंध बढ़ाए गए, दलितों के लिए निकृष्टतम नियम मनुस्मृति में दर्ज किए गए। इन नियमों के पालन में यदि किसी दलित ने अनजाने में ही वेद पाठ सुन लिया है तो उसके कानों में तेजाब डाला जाता था, और यदि वह कंठस्थ कर लेता तो उसकी निर्दयता से हत्या कर दी जाती थी। राम ने इसी प्रकार शंबुक का वध किया था। यद्यपि वर्ण व्यवस्था ने वर्तमान जाति व्यवस्था को जन्म दिया है, तथापि प्राचीन वर्ण व्यवस्था पेशे पर आधारित थी न कि जन्म पर। बुद्ध के समय बड़ी संख्या में दलित बौद्ध बने, क्योंकि बौद्ध परंपरा जाति व्यवस्था का निषेध करती थी। वह अपने आचरण में अपनी सच्ची मानव समानता स्थापित की। बड़ी संख्या में चमारों जाटों ने बौद्ध धर्म अपनाया। लेखक ने डॉक्टर अंबेडकर के उदाहरण से बताया है कि भारत में 400 ईस्वी के आसपास छुआछूत की शुरुआत हुई। भारत के सामाजिक इतिहास में यह गंभीर मोड़ था। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को समाज का प्रदूषक कहा है। भारत में जाति व्यवस्था जितनी पुरानी है उतना ही पुराना इसका प्रतिरोध भी है। माता प्रसाद ने जाति व्यवस्था के बहुत पुराने विरोधी के रूप में चार्वाक का जिक्र किया है, जिन्होंने 4000 वर्ष पूर्व जाति व्यवस्था का विरोध किया। इसके बाद गौतम बुद्ध व संपूर्ण बौद्ध परंपरा ने इस व्यवस्था का विरोध किया। मध्यकाल में संतों व भक्ति परंपरा ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, बी पलटू आदि हिंदू सुधारक जाति व्यवस्था का विरोध करते रहे, लेकिन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत के पोषक हिंदू धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति का समर्थन करते रहे। महाराष्ट्र में पहले ज्योतिबा फूले व फिर डॉक्टर अम्बेडकर तथा तमिलनाडु में ई.वी. स्वामी नायकर ने ही सही मायनों में दलित जागृति की कुक्रांतिकारिता प्रदान की तथा उन्हें अपने सामाजिक दमन के विरुद्ध खड़ा किया। माता प्रसाद ने हिंदी साहित्य के दलितों के चित्रण पर चर्चा शुरू करने से पहले भारत में दलित स्थिति की यह पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। उन्होंने दलितों के पृष्ठभूमि पर चर्चा को दलितों व गैर दलितों दोनों को सद्भाव व शांति से जीने और एक दूसरे का उचित सम्मान करते हुए जियो और जीनो दो के सिद्धांत का पालन करने के प्रेरणादायक आह्वान के साथ समाप्त किया है। पुस्तक के अगले हिस्से में लेखक ने दलित हिंदी कविता पर 5 हिस्सों में विचार किया है। सबसे प्राचीन है सिद्धनाथ काव्य परंपरा। 8वीं सदी से 13वीं सदी के बीच उत्तर भारत में 84 सिद्ध हुए। इन सिद्धों में कम से कम एक तिहाई दलित पृष्ठभूमि से थे। यह वह समय था जब बौद्ध धर्म भी अपने शिखर पर था। राहुल सांकृत्यान ने दोहा कोश में सिद्ध कविता संकलित की है। सरहपा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ व जालंधरनाथ अन्य सुपरिचित सिद्ध हैं। अंतिम तीन व कई अन्य सिद्धों को नाथ भी समझा जाता है। गोरख का प्रसिद्ध दोहा है जिसमें कहा है कि हिंदू मंदिर की पूजा करता है व मुसलमान मस्जिद में सजदा करते हैं, किंतु योगी सर्वोच्च स्थान की पूजा करता है जहाँ न कोई मंदिर है न मस्जिद। सिद्ध या नाथ परंपरा में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। महाराष्ट्र में भी नाथ वारकरी परंपरा काफी सशक्त है। इस प्राचीन परंपरा पर विचार करने के बाद लेखक मध्यकाल की संतवाणी या भक्ति परंपरा पर विचार शुरू करते हैं, जो लगभग पूरी भारत व सभी भारतीय भाषाओं में व्याप्त है। लेखक का विचार है कि संतवाणी ने दलितों को प्रेरणा दी है और उन्हें उससे आत्मविश्वास मिला है। इस परंपरा में सबसे पहले संत कबीर पर चर्चा की गई है। कबीर सिर्फ संत ही नहीं, वरन वे सही अर्थों में विद्रोही भी थे। वे भाषा तक के स्तर पर कोई समझौता नहीं करते तथा सामाजिक बुराइयों पर अत्यंत खुरदरी व आक्रामक शैली में प्रहार करते हैं। ब्राह्मणों से वे पूछते हैं, जे तू बामण बमड़ी जाया तो आन बाट का हे नहीं आया। मुसलमानों को भी वह यूं ही नहीं छोड़ते, जे तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर खतना क्यों न कराया। थोड़े प्यार भरे स्वर में कबीर कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिको भजे सुहरिका होए। संत परंपरा में दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत हैं गुरु रविदास। वास्तव में वर्तमान काल में संत या गुरु रविदास का नाम दलित जागृति का चिन्ह बन गया है। पंजाब में व शायद किसी अन्य भी एक जात विशेष रामदासी या रविदासी भी कही जाती है। कबीर यदि जुलाहा परिवार में पैदा हुए थे तो रविदास चमार परिवार में, जो सामाजिक स्तर पर और भी नीचे स्तर की समझी जाती है। फिर भी ईश्वर से एकमेव होने की सच्ची कामना ने उन्हें अपने जीवन काल में ही अत्यंत सम्माननीय संत का दर्जा दिलाया और अनेक उच्च जाति के राजाओं गुरुओं ने उनसे आशीर्वाद मांगा। रविदास अपनी वाणी में कबीर से कटु हैं, लेकिन समझौता वे भी नहीं करते। कबीर की तरह वे भी जातिवाद की अवधारणा पर यह कहकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तुम कत बामण का हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। उत्तर भारत में इन दो संतों ने मध्यकाल में श्रम के सम्मान व मानव समता की जागृति का वातावरण पैदा किया। दोनों ने दीर्घायु पाई, उनके प्रयत्नों को और शक्ति दी अन्य संतों दादू दयाल, पलटू साहिब, सुंदरदास, मलूकदास, संत रज्जब, सेन, पीपा आदि की वाणी ने। पंजाब में गुरु नानक द्वारा आरंभ किए आंदोलन ने सामाजिक स्तर पर क्रांतिकारी स्वरूप ग्रहण किया। 10 गुरुओं व पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित आदि ग्रंथ में बड़ी संख्या में पंजाबियों की मानसिकता को रूपांतरित कर दिया, जिनमें से अधिकांश ने उस समय के अधिक उदार धर्म में दीक्षा ले ली। प्राचीन और मध्यकाल के बाद माता प्रसाद आधुनिक काल में सुधारवादी आंदोलन पर चर्चा करते हैं, जिनसे दलित जीवन पर केंद्रित कविता का जन्म हुआ। आधुनिक काल में पहला ऐसा आंदोलन आर्य समाज आंदोलन है। वेदों की स्वामी दयानंद द्वारा जिस ढंग से गैर जातिवादी दृष्टिकोण से व्याख्या की गई, उससे कई हिंदी कवि प्रेरित हुए। लेखक ने आर्य समाज से प्रेरित ऐसे कई कवियों जैसे नाथूराम शर्मा शंकर, रूपनारायण पांडे, निरंकार देव सेवक, दीपचंद निर्मोही, डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ आदि के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने आर्य समाज से प्रभावित हो दलित जीवन पर कविताएं लिखी। आर्य समाज के बाद माता प्रसाद ने गांधीवाद व दलित दृष्टिकोण से हिंदी कविता पर इसके प्रभाव की चर्चा की है। आधुनिक हिंदी कवियों में वे भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह सम्मान देते हैं कि उन्होंने छुआछूत का सबसे पहले विरोध किया। भारतेंदु गांधी व जातिवाद से पहले के कवि थे। गांधीवाद के प्रभाव से लिखने वाले कवियों में लेखक रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, वशियाराम शरण गुप्त, हरिकृष्ण प्रेमी, भगवती चरण वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, दुलारी लाल भार्गव, आरसी प्रसाद सिंह व कुछ अन्य कवियों का जिक्र करते हैं, जिन्होंने छुआछूत तो दलित जीवन के संबंध में लिखा। विचारधारात्मक प्रभाव के अंतर्गत लिखी गई कविताओं के अतिरिक्त हिंदी में आधुनिक काल में दलित जीवन पर और भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। माता प्रसाद ने हिंदी कविता के विशाल सागर में से ऐसी कविताएं ढूंढने का श्रमसाध्य कार्य किया है। इस भाग में वे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रविन्द्र भ्रमर, कमल भारती, कीर्ति चौधरी, नेमीचंद्र जैन व स्वयं अपनी उन कविताओं का उल्लेख करते हैं जो दलित जीवन को आधार बनाकर रची गई हैं। पुस्तक के दूसरे खंड में लेखक ने हिंदी की दलित कविता का चयन प्रस्तुत किया है, उन्होंने इस चयन को 5 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में उन्होंने प्रगतिवादी व रोमांसवादी आंदोलन को दलित काव्यधारा के सबसे अधिक निकट मानते हुए इस धारा से दलित जीवन संबंधी कविताओं का चयन किया है। इस भाग में बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुमन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, त्रिलोचन शील, शमशेर बहादुर सिंह, शिव कुमार मिश्र, रामविलास शर्मा, वीरेंद्र मिश्र आदि की कविताओं का चयन है। व्यवहारिक रूप में यह संकलन प्रकृतिवाद के तमाम कवियों की जानकारी देने वाला है। प्रगतिशील कविता का मूल्यांकन दलित धारा के सर्वाधिक निकट रूप में करते हुए व इस धारा द्वारा दलित जीवन की संवेदनशीलता से चित्रित करने के प्रयासों का स्वागत कर माता प्रसाद ने वस्तुगत आकलन किया है, जो श्लाघ्य है। दूसरे भाग में महाकाव्यात्मक हिंदी कविता में दलित धारा की प्रस्तुति है। इस भाग से पता चलता है कि अधिकांश महाकाव्य व खंड काव्य दलित मिथिहासिक चरित्रों पर आधारित हैं। शंबूक, शबरी, एकलव्य कवियों के सर्वाधिक प्रिय चरित्र हैं। ऐतिहासिक नायकों में गौतम बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर, झलकारी बाई आदि ने कवियों को सृजन की प्रेरणा दी है। जिन कवियों का उल्लेख इस भाग में है, उनमें से कुछ हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, धनंजय अवस्थी, जगदीश गुप्त, लक्ष्मी नारायण सुधाकर, माता प्रसाद सागर, नरेश मेहता, माया शर्मा, बाबूलाल सुमन, माता प्रसाद। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर ने सही मायनों में दलित चेतना का क्रांतिकरण किया, उनका बिंब भी भारतीय दलितों के लिए एक मिथक से कम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व ने दलित कवियों व लेखकों को सृजन के लिए सबसे अधिक प्रेरित किया व उत्साहित किया है। पंडित धर्मदेव मार्तंड ने संस्कृत में डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा में अनेक श्लोक रचे। हिंदी में बाबूलाल सुमन, रणजीत सिंह, मनोहर लाल प्रेमी, केदारनाथ प्रभात, सियाराम शरण आदित्य, उदय प्रकाश सिंह, पीडी टंडन, नाथुराम सागर, राजमणि मिश्रा इत्यादि कितने ही कवि हैं जिनकी डॉक्टर अंबेडकर पर रची कविताओं का उल्लेख और चयन इस पुस्तक में है। इस खंड का चौथा भाग दलित काव्य में आक्रोश पर केंद्रित है। अपेक्षाकृत लंबे अध्याय में लेखक दलित जीवन पर रची हिंदी कविता में व्यक्त न्यायोचित व सच्चे आक्रोश पर विचार करते हैं। इस भाग में ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर अमर सिंह, प्रेमशंकर, सोमदत्त, विजेंद्र, राजेंद्र शर्मा, नंद चतुर्वेदी, ज्ञानेन्द्र पति, लालचंद राही, पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, कालीचरण, स्नेही, सोहनलाल, सुमनाक्षर, कमल भारती की पृष्ठभूमि दलित वर्ग की है। वह अनेक कवि प्रगतिशील धारा से भी जुड़े हैं। इस पुस्तक के इस खंड के अंतिम भाग में माता प्रसाद ने लोकगीतों, क्षेत्रीय गीतों व गीतों में दलित विषय की चर्चा की है। हीरा डोम के सितंबर 1914 की सरस्वती में प्रकाशित प्रथम भोजपुरी गीत अछूत की शिकायत से यह चर्चा शुरू होती है। अन्य जिन गीतकारों के गीतों का जिक्र व चयन इस भाग में है, वे हैं स्वामी अछूतानंद, गोकर्णलाल, करुणाकर, माता प्रसाद, धर्म सिंह गौतम आदि। जब ये गीत गाए जाते हैं तो सुनने वालों की चेतना पर अधिक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इस प्रकार माता प्रसाद में दलित काव्य धारा के प्राय सभी सोचे जा सकने वाले पक्षों को अपने विचार चर्चा का केंद्र बनाया है। जितना विशाल यह कार्य था, वह किसी एक व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाना संभव नहीं प्रतीत होता था, किंतु माता प्रसाद ने यह कार्य केवल अपने बलबूते पर संपन्न कर दिया है, यद्यपि इनमें उन्हें अपने मित्रों से कुछ सहायता मिली है। इस प्रकार से इस अग्रगामी शोध कार्य द्वारा लेखक ने हिंदी में दलित साहित्य पर या दलित दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य पर शोध के लिए आगे अधिक नियोजित रास्ते खोल लिए हैं। माता प्रसाद को इस अग्रगामी कार्य, जिसमें दलित कविता पर शोध व दलित कविता का चयन दोनों शामिल हैं, के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस क्षेत्र में और शोध करने के लिए उन्होंने उच्च स्तर के प्रतिमान भी निश्चित कर दिए हैं।